Pocket Mantra, Mantra. Pocket Mantra. Pocket Mantra. Pocket Mantra. Pocket Mantra. Mantra. Pocket Mantra. Namaskar and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I'm your anchor, Lalema Aneja Dang, and with me is my co-anchor, Manoj Pathak.
Namaskar, Market Mantra ki tazank mein aapka swagat hai. Aadhe ghante ke is karyakram mein hamesha ki tarah hum desh aur duniya ki chuni hui karobari, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक मामलों के वरिष्ठ पत्रकार उदयन ले। उदयन नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
धन्यवाद मनोज।
आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं लालिमा अनेजा डैंग।
Thank you, Manoj. Yes, friends, let's begin as always with the headlines. Benchmark domestic equity indices continue downtrend. Sensex sheds 502 points. Nifty settles below 24,200. Over 17 lakh new employees enroll under Employees State Insurance Corporation scheme during October this year. And crude oil prices rise. Brent crude trades at $73.62 per barrel.
Garilu share bazaar mein गिरावट का सिलसिला जारी। सेंसेक्स 502 अंक लड़का, निफ्टी 24,200 के नीचे फिसला। देश में इस वर्ष अक्टूबर में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत 17 लाख से अधिक कर्मचारी जुड़े और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमत बढ़ी। ब्रेंट क्रूड के दाम $73.62 प्रति बैरल पर पहुंचे। घरेलू शेयर बाजार पर मंदड़िए आज भी हावी रहे, मुनाफा वसूली का सिलसिला भी चला और अंततः गिरावट के साथ प्रमुख सूचकांक बंद हुए। अमेरिका में केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की नीतिगत बैठक से पहले बाजार में उठापटक का दौर पिछले कुछ सत्र से हम देख रहे हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में आज 502 अंक घटकर 80,182 पर फिसल गया। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 137 अंक कम होकर 24,199 दर्ज हुआ। विस्तृत बाजार की ओर चलें तो वहां भी बिकवाली तेज थी। बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 0.6% की गिरावट हुई। स्मॉल कैप इंडेक्स 0.7% नुकसान में रहा।
और लेट्स टेक अ लुक एट द स्टॉक्स इन डिटेल नाउ। बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडेक्सेस टुडे कंटिन्यूड देयर डाउनवर्ड ट्रेंड, एंडिंग विद लॉसेस ऑफ ओवर 0.5%। ऑल्सो द investors remained cautious ahead of Federal Reserve's final monetary policy decision of the year. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange, Sensex, fell 502 points to close at 80,182. Similarly, the National Stock Exchange, Nifty 50, lost 137 points to end at 24,199. The broader market indices at the BSE also logged losses. Mid-cap index shed around 0.6% and the small-cap index lost over 0.7%. In the Sensex index, 22 out of 30 companies ended lower. In the top laggards, Tata Motors slumped over 3%, Power Grid lost over 2.5%, and NTPC dropped more than 2%. Conversely, among the top gainers, Reliance and Sun Pharma both gained over 0.6% each, TCS added over 0.5%, and Tech Mahindra rose 0.5%. In sectoral indices at the BSE, 17 out of 20 sectors ended in negative territory. In the top laggards, utilities dipped over 2%, power shed over 1.7%, and capital goods lost over 1.5%. Meanwhile, among the top gainers, healthcare gained over 0.5%, focused IT rose over 0.2%, and information technology was slightly up by 0.1%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 1,442 companies advanced and 2,563 declined, while 94 remained unchanged. At the National Stock Exchange, 94 companies hit their 52-week high, while 34 hit their 52-week low. So, Udayan, what do you have to say about this? Before that, shall we take a look at the rupee?
Bilkul. Pehle hum rupee par nazar dalte hain. Antar banking videshi mudra bazar mein, share bazar ki tarah, रुपए में भी आज नरमी बनी रही. एक डॉलर की तुलना में रुपया बंद होते समय 5 पैसे कमजोर होकर 84.94 रुपए के स्तर पर बंद हुआ. उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक समाचार तैयार किए जाने तक अंतरदिवसीय कारोबार में 106.91 पर चल रहा था.
सो देन बैक टू माय क्वेश्चन, इंडियन मार्केट्स थर्ड डे डाउनवर्ड ट्रेंड, डाउन बट नॉट आउट एंड नेवर आउट, नॉट टू सून.
No, this is something that we can expect, this kind of a pressure on the market. Although, Lalima, as we know, these things don't last forever.
Mm-hmm.
But one can reasonably expect this kind of trend to continue for a very long time. I would say till the middle of next year. Primarily, it's right now. This part that we are talking about is primarily because of the, as you very rightly pointed out, is because people are waiting for what's going to happen in the Federal Reserve meeting,
right.
Which is in the U.S., U.S. Federal Reserve. It's expected that they'll the central bank, U.S. central bank, will reduce interest rates by 25 basis points. But that is already baked into the market. That is not what people are actually looking at. People are actually trying to figure out as to what the Federal Reserve is planning or is thinking about the course of interest rates in the next year or so, 2025.
Yes.
So towards the second half of this year, it was expected that by the end of 2025, there will be a 100 basis point, that which is 1 percentage point cut. Now the market thinks that no, after the political changes that are all slated to happen, the new U.S. administration and the policies that they have professed that they're going to implement, they think that it's only going to be 50 basis points. So the market was thinking, investors were thinking, they were taking a particular direction in investment. Now they are trying to correct that. So everything that you're seeing across markets, whether it's currency, whether it's stock markets, whether it's bond markets, I mean debt markets, everywhere you're seeing that. And basically, it's working like this, that people now think that not too many rate cuts are going to happen,
mm-hmm.
as many as they had thought. Therefore, and they are also expecting a bounce, a fiscal kind of stimulus, because if there's a tax cut happening, which the new administration is talking about, it's like a increased spending, you're boosting. So they expect economic growth to boost up out there.
Mm-hmm.
At the same time, they think that the spending will be more than what they're going to earn. So basically, we're talking fiscal deficit going up, which tends to be inflationary. You know, it tends to pump up inflation. Federal Reserve, people are waiting for Federal Reserve, but Federal Reserve will have to wait for data to see whether it can do more rate cuts. Now, you can clearly see the amount of uncertainty that's bringing in the markets.
Right.
When you're taking a higher risk investment like equities, stocks, you want certain visibility. You want to know, if I put in money, what is the risk? And when do I think I'll make my returns? So everything, all the key information that is helpful in making that determination is actually coming into question. So till the time actually the new administration comes in place and starts taking those decisions, you will continue to face this, because till somebody actually implements a policy, you cannot see the consequences. And this is reasonably uncharted territory. So it was a one sentence question, and look at the kind of time it has taken me to just briefly touch upon it.
I think the decisive date will be the 20th of January 2025.
Absolutely.
And as I say in Hindi, dekhte hain oont kis karvat baithta hai.
Right.
Yes, Manoj.
कुल मिलाकर यदि ये हम समझें आम श्रोताओं के लिए, तो इसका तात्पर्य हुआ कि अभी की स्थिति बड़ी ही फ्लूइड, यानी बड़ी सी तरलावस्था चल रही है. बाजार अनुमानों पर, अंदाजों पर, कयासों पर निगाहें लगाए बैठा, और क्या होगा कुछ भी समझना, आंकना, नीति बनाना कठिन है. ऐसे में हम इतिहास को पलट सकते हैं, और इस वर्ष जो कारोबार रहा है वैश्विक, उसमें भारतीय पूंजी बाजार की जैसी स्थिति रही है, कौन कौन से सेक्टर आपको उभरते हुए नजर आ रहे हैं पिछले एक साल के दौरान, जिन्होंने चुनौतियों के दौरान बेहतर प्रदर्शन अपेक्षाकृत किया हो और आने वाले दिन टैरिफ वार की आशंकाएं व्यक्त की जा रही उन्हें देखते हुए कौन सा सुरक्षित निवेश कहां कहां दिख रहा है, किस सेक्टर में?
देखिए जो कुछ एरियाज में हमने बैंकिंग में जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वहां पे प्रदर्शन अच्छा रहा, पर जैसे कहते हैं ना गाड़ी चलाते वक्त आप रियर व्यू मिरर से आपको अंदाजा तो हो रहा है कि आप पीछे क्या छोड़ के आ रहे
हैं,
पर आपको सामने वाला जो कांच है या सामने जो आपका आपकी जो सीनरी है सड़क कैसी है वो सब देखना पड़ेगा। तो जैसे अपने टैरिफ वार का एक खड्डे की तरह है एक सड़क जिसमें एकदम से कुछ सामने आ जाता है उस तरीके का हिसाब किताब जरूर नजर आ रहा है। तो पीछे जो निकल गया और आगे जो आएगा उसमें इतना फर्क है कि इस वक्त वो आज ये बता पाना कठिन, जब कठिन। वो हम निकल जाएंगे तो तब हम कहेंगे कि अरे उस वक्त हमने इतने 10 चीजें हम क्यों सोच रहे थे, ये तो तीन ही निकली। पर जैसे कहते हैं ना हाइंडसाइट 20/20, पीछे से जब मुड़ के देखते हैं तो आसान हो जाता है क्योंकि वो घटनाएं घट चुकी होती है। पर ये भी बताते चले अगर टैरिफ वॉर के बारे में बातचीत हो रही है जहां पे शुल्क लगाए जा रहे हैं आयात शुल्क, तो ये ना वन टाइम एपिसोड है। मतलब आप जैसे कई आपको याद होगा जीएसटी या कभी लगा हो कि आपने कहा ये रेट है
जी जी
आप उसी में लग गए वो रह गया, तो ये वन टाइम मूवमेंट होता है उसके बाद जो है पूरी सिस्टम उसमें एडजस्ट होती है। ऐसा नहीं होता कि बार बार होता चला जाता है, कई बार क्या होता है प्रेशर होता है इन्फ्लेशनरी प्रेशर मुद्रास्फीति का उसमें कुछ कुछ होता रहता है, तेल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं या कुछ और हो रहा है उस वजह से प्रेशर बना रहता है। ये वन टाइम होता है अनलेस सरकार ऐसी होती है यूएस की सरकार और बाकी सरकारें जो कंटिन्यूस बेसिस में बढ़ा रहे हैं, और उसको करना भी मुश्किल होता है क्योंकि एक बार आप करते हैं फिर नोटिफाई करना पड़ता है पूरे तंत्र को बताना होता है। तो ये वन टाइम होगा, वन टाइम अगर वो उठेगा और लोगों का मानना है मुझे भी वो कन्विंसिंग लगता है कि एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर जरूर बना रहेगा यूएस में, उसकी वजह से फेडरल रिजर्व के पास जो वो सोच रहे थे कि जितने इंटरेस्ट रेट कट्स करेंगे वो नहीं कर पाएंगे। अगर वो नहीं कर पाते हैं उसके बावजूद भी क्या होता है अगर यूएस इकोनॉमी बेहतर प्रदर्शन करती है जो कि उम्मीद की जा रही है, तो इमर्जिंग मार्केट्स का जो एक आर्ग्यूमेंट था कि इमर्जिंग मार्केट्स में पैसे आएंगे वो अट्रैक्टिव होंगे, जब सबसे सेफ इकोनॉमी सबसे ग्रोइंग और रोबस्ट इकोनॉमी वो बेहतर प्रदर्शन करती है तो फिर आपको रिस्क लेने की जरूरत कम पड़ जाती है।
जी,
दूसरा है कि ऐसे जगह में जब मुद्रास्फीति होती है तो क्या होता है कि आप लंबी अवधि के अगर डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लेते हैं जैसे बॉन्ड्स हो गए या फिक्स्ड डिपॉजिट उस दर्जे की जो चीज है उसमें आपको अधिक रिटर्न मिलेगा, इंटरेस्ट रेट मिलेगा, कूपन रेट मिलेगा, तब आप जाएंगे। तो ये कुछ बातें आ जाती है, फिर इसका मतलब एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स के जो रेट्स हैं और उनके जो डिमांड है वो कम हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे एक प्रेसिडेंट इलेक्ट के अल्फाज जो हैं उनके वक्तव्य जो है वो कैसे कैस्केडिंग इफेक्ट इकोनॉमी में करता है, और वो अगर नंबर वन इकोनॉमी है बाय अ ग्रेट डिस्टेंस तो फिर विश्व स्तरीय उसके इम्पैक्ट क्या होते हैं, अभी तक तो अज्यूम भी नहीं किया ऑफिस तब जाके ये रेपरकशंस हो रहे हैं। पर मुझे लगता है एक बार जब वो आ जाता है तो फिर अनसर्टेंटी नहीं रहेगी, फिर आपको मालूम चल जाएगा कि ये नीतियां हैं इसके असर ये है, फिर पूरी सिस्टम एडजस्ट करने लग जाती है। हायर रिस्क इन्वेस्टमेंट greater the uncertainty more the volatility, मतलब price changes are happening at over very short periods.
Right. All right, let's move on, friends. Over 17 lakh new employees were enrolled under the Employees State Insurance Corporation, ESIC, scheme during October this year. The Ministry of Labour and Employment today said that the net registrations showed a growth of 3% in comparison to October last year. The data showed that out of the total 17.8 lakh employees added during the month, 8.5 lakh employees amounting to over 47% of the total registrations belong belong to the age group of up to 25 years. According to the Labour Ministry, 21,588 new establishments have been brought under the Social Security ambit of the ESI scheme in October for ensuring social security to more workers. The gender-wise analysis of the payroll data indicated that the net enrolment of female members was 3.52 lakh during October. About 42 transgender employees also got registered under ESI scheme. What is your reflection on this story?
Of course, the first thing some people would say that's showing a certain amount of employment happening. But the kind of employment required for us, the lot of employment, Lalima, also happens in the, most of the employment, shall I say, happens in the informal sector. So this may or may not reflect that. But the more interesting part, I would say, is this: these things are important. You know why? Because in our country, in India, if you spend, an average Indian, if he spend, he or she spends rupees 100 on health, doesn't matter who it is, about 70 rupees is going through one's pocket. Now ESI coverage, I mean, sometimes what happens is, and our coverage possibly for health insurance or health in some kind of cover is not more than 10% of the, you know, working population. I could be, I would stand corrected with latest figures, but that's roughly the kind of uncovered people there are. Now ESI is one of those tools or devices, which is not exactly insurance, but yet your coverage is happening. So, you know what happens, Lalima, is that even a small illness which makes you go to the hospital can completely change the financial situation of a family.
Absolutely.
It doesn't matter whether it's, if it's the person is aged, then it affects even more. If it's less, even then it affects, because you probably don't know what kind of, you know, it basically, you have to dip into a savings pool. Sometimes you have to borrow money, so it disrupts.
Absolutely.
So any kind of coverage like this is very, very important for the financial stability, especially of the workforce. So from that standpoint, I think these kind of efforts are very important, because they are all building up in having a health coverage. You know, we have seen
social security.
Yeah, absolutely. Health coverage, you know, we have seen the extension 70 plus for one government scheme.
Yes, yes.
So these things are going to become very important. Last but not the least, we need to remember healthcare costs, especially when it's which is involving hospitalization, okay, when you have to go to the hospital or thereabouts, you know, it's typically rising at 10 plus percentage rate per annum. Every year these costs are going up by 10%. So that's a very underestimated thing, you know. If you're in a large city, it's going to be more. So if you get hit by a health episode, then the impact is very, very formidable. Look at the average inflation rate. It'll, right now it's probably 10-year average annual inflation rate is somewhere around 5%. It's exactly double, more than double. So something like an ESI, something like the various insurance schemes that are health insurance schemes, they become so important.
Right. Notwithstanding the Ayushman Bharat Yojana, and notwithstanding the fact that the government is giving now 5 lakh rupees as a help for the to people above 70 years of age across all sections. Right. And a very important last bit of the story, which probably we just missed, a sign of New India, 42 transgender employees also got registered under ESI scheme. Let's move on.
Aaiye, khabron ka silsila aage badhaein. Desh mein chalu vitt varsh mein kal tak pratyaksh kar sangrah badhkar 19,21,000 crore रुपए से ऊपर पहुंच गया। आयकर विभाग की ओर से यह जानकारी देते हुए बताया गया है कि वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में इसी अवधि में चालू वित्त वर्ष में अब तक कर संग्रह में 20.32% की वृद्धि हुई है। संग्रह में कॉरपोरेट टैक्स में 9,24,000 करोड़ रुपए से अधिक और नॉन कॉरपोरेट टैक्स में 9,53,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की गणना की गई है। विभाग ने कल तक 3,38,000 करोड़ रुपए से अधिक का रिफंड भी जारी कर दिया है। इस अवधि में कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह 15,82,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया, जो 16% से अधिक की महत्वपूर्ण वृद्धि है. कुल मिलाकर इसे एक उपलब्धि माने, बेहतर दिशा में हम जा रहे हैं.
बिल्कुल मनोज, क्योंकि आप अगर हमारे इतिहास देखें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस का, तो 80 के दशक में अगर हम चले जाए काफी दिन पहले के जा रहे हैं, तो तब इनडायरेक्ट टैक्सेस से ही उठाया जाता था
जी,
पैसे.
जी.
तो वो क्या होता है मनोज, वो एक तरीके से वो इन्फ्लेशनरी होता है, लोगों के ऊपर दबाव पड़ता है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है कि आपकी कमाई कैसी है.
बिल्कुल,
कॉर्पोरेशन की, तो जो ज्यादा कमा रहे हैं उसको ज्यादा योगदान की, कर योगदान की जरूरत है. तो प्रोग्रेसिव ये नॉन इन्फ्लेशनरी, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होता है एंड प्रोग्रेसिवली सो होता है. तो जितना बेहतर हम होते चले जाएंगे, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, वो ये डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाएगा. एक और आपने इसी के अंदर आपने खबर पढ़ी रिफंड, जो वो ये दिखा रहा है कि हमारा जो तंत्र है जिसमें जो डिजिटाइजेशन और आईटी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है वो फैंटास्टिकली 38,000 करोड़ अगर रिफंड जा रहा है, ये माइंड ब्लोइंग है.
बिल्कुल, बिल्कुल.
और सीधे खाते में जा रहा है. एंड दिस एक्चुअली ये एक्चुअली हेडलाइन होना चाहिए था.
बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल.
तो नॉट टू विद ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि ये जबरदस्त आपकी सिस्टम की एफिशिएंसी, और अब तो रिफंड्स बहुत फास्ट हो रहे हैं एंड एफिशिएंटली जा रहे हैं. तो ये एक वो जमाना था, और ये जो न्यू इंडिया का एक के बारे में जब बात करते हैं, दीज आर द accomplishments, जिसके बारे में हमें और अधिक बात करने की जरूरत है.
And you think digitization of the country has helped in the increase in direct taxes?
Oh, no doubt about it, Lalima. And things like GST, then things like you know, when you are certain every kind of transaction being mapped, so you do a property purchase, you buying gold, everything. So what you are trying to do is you are bringing everything under the formal economy.
Yes.
So there are ways of all those loopholes and routes, you're plugging them, and that's the hallmark of a good. It's also important to have a secure economy, because you need to know where the money is coming from, where it is being used, because of security and other reasons. So this is very, very important.
Right. And moving on, in Punjab, farmers today blocked train routes at 52 places under Firozpur Railway Division as part of their three-hour rail roko protest. They squatted on railway lines, causing much inconvenience to passengers. However, the protest passed off peacefully. Farmers are protesting in support of their demands, including a legal guarantee for minimum support price of crops.
आइए आगे बढ़े. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने निवेश परामर्श देने के इच्छुक व्यक्ति को निवेश सलाहकार विनियम 2013 के तहत योग्य और पंजीकृत होना अनिवार्य कर दिया है. सेबी ने मंगलवार को भारत में निवेश सलाहकारों के लिए मानदंड कड़े करने के लिए प्रस्तावित संशोधन प्रकाशित किए. इन संशोधनों में निवेश सलाह दिए जाने के संबंध में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग की बात कही गई है. इनमें ग्राहक डेटा की सुरक्षा, गोपनीयता और सलाह की सटीकता के लिए निवेश सलाहकारों पर जिम्मेदारी अधिक डाली गई है. यहाँ पर इस खबर को समझने के साथ ही हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे. सेबी ने जो एक नई कह लें कि योजना, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड SIF जारी किया, उसके बारे में भी श्रोताओं को जानकारी दें ये क्या है, और जो हमारे अधिक जोखिम लेने वाले कह लें निवेशक हैं, उनके लिए किस रूप में लाभदायक सिद्ध हो सकता है.
मनोज, ये जो आखिरी में आपने बोला है उसके बारे में अभी भी इंफॉर्मेशन समझने की कोशिश की जा रही, पर बताते चलें कि म्यूचुअल फंड्स जब आप निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो बेंचमार्क होता है, एक मानदंड होता है, उसके साथ आप कंपेयर करते हैं. तो फंड मैनेजर जो आपके पैसे मैनेज करते हैं, उनका काम ये होता है कि वो बेंचमार्क को बीट करें, बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन करें, जो कि किया जाता है. पर कई बार क्या होता है, लोगों को जो जैसे जैसे आप सेविंग्स आपकी बढ़ती चली जाती है और आपके आप निवेश अधिक करते हैं, आपका वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, मतलब फ्यूचर में इनकम करने की सक्षमता आपकी बढ़ जाती है, तो आप चाहते हैं ये ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है कि आप चाहते हैं कि कुछ हिस्सा आपके जो निवेश इन्वेस्टेबल फंड्स हैं वो जैसे आपने कहा कि अधिक जोखिम लेके अधिक रिटर्न लेने की कोशिश करें। तो अब पहले क्या था कि उस पायदान में जाने के लिए छलांग मारनी पड़ती थी क्योंकि आपको ढेर सारे पैसे का एक लिमिट था जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज हैं ये बैंक देते हैं उन कई कई और उसके साथ जुड़े हुए किन नियमों के अंडर रेगुलेट होते थे। तो बीच में इस पायदान और उस पायदान के बीच में जो फासला है उसको कम करने के लिए और ताकि जो व्यक्ति हैं उनको अधिक अधिक रिवॉर्ड अधिक रिटर्न के चलते उनको ज्यादा जोखिम ना लेना पड़े रेगुलेटेड एक प्रोडक्ट मिले वो जो आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए ये इंतजाम किया जा रहा है। मतलब बताते चलेंगे अगर गाड़ी जब आप चला रहे हैं तो आप ज्यादा स्पीड वाली गाड़ी में जाना चाहेंगे ना कि आप रेस ट्रैक में जो गाड़ी चलती है उसमें जाने तो दोनों के बीच में एक बेहतर गाड़ी जो कि अधिक स्पीड में एक्सप्रेसवे में जा सकती हैं गली में नहीं और आपको वो जो थ्रिल है वो दे सके वो एक्सपीरियंस दे सके तो उसके बारे में बातचीत हो रही है यहाँ पे
जी।
Alright, let's talk about neighbors. As they said, love thy neighbor. And someone said correctly, you can choose friends, but not your neighbors. Sri Lanka is our neighbor, and Sri Lanka's economy has grown by 5.5% year on year in the third quarter of 2024, according to data released by the island's Department of Census and Statistics. GDP at constant prices rose to about 3.152 trillion Lankan rupees from 2.987 trillion rupees in third quarter 2023. The Sri Lankan president was here recently, and I think it's important that our neighbors also do well, isn't it, Udayan?
Absolutely, Lalima.
पड़ोसियों की चर्चा हुई है तो आइए उनके शेयर बाजार का भी रुख जरा हम कर लें।
जी,
सबसे पहले एशियाई हमारे पड़ोसी दक्षिण कोरिया का कोस्पी आज 1% से अधिक लाभ के साथ बंद हुआ। हांगकांग के हैंगसेंग में 0.8% की वृद्धि हुई। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.5% से अधिक लाभ में रहा। उधर बिकवाली के दबाव में जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.7% लुढ़क गया। सिंगापुर के स्ट्रीट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.4% की कमी आई। यूरोपीय बाजार की ओर चलें तो वहां भी प्रमुख बाजारों में समाचार तैयार किए जाने तक तेजी दिख रही थी। लंदन का फुटसी 100 0.1% ऊपर चल रहा था। जर्मनी के डेक्स और फ्रांस के कैक 40 दोनों में 0.3% की वृद्धि बनी हुई थी।
All right, let's talk about the U.S. Back to the U.S., the number one economy, probably. U.S. stocks logged losses yesterday. The Dow Jones Industrial Average shed over 0.5%, ending in negative territory for the 9th consecutive session, and the S&P 500 as well as Nasdaq Composite fell over 0.3% each. The two-day meeting of the U.S. Federal Reserve commenced yesterday and will continue today. This is the last Federal Open Market Committee, FOMC, meeting in current fiscal year. The FOMC projections will be released along with the decision on the rate cut. We know that the U.S. Federal Reserve's decision is looming large over the global markets. Udayan, we've talked about it a little while ago. Moving on to oil. Oil prices rose today as investors stayed cautious ahead of a potential interest rate cut by the U.S. Fed Reserve. Brent crude was trading above $73.62 per barrel, gaining over 0.5%. WTI crude also advanced over 0.7% to trade at around $70.58 per barrel, according to latest reports.
तेल किस दिशा में जाता दिख रहा आप?
ये बिल्कुल मुझे लगता है कि ये काफ़ी हद तक रेंज बाउंड रहेगा और अगर चाइना में मंदी और यूरोप में मंदी रही तो ये जो एक लोगों को कई बार आशंका रहती कि अनलीश हो जाएगा वो एक रेंज के अंदर कैद होता हुआ मेरे को नजर आ रहा है।
आइए चलें सराफा बाजार। सराफा बाजार में समाचार तैयार की जाने तक सोना आज बढ़त के साथ था। भारत में 24 कैरेट सोने का मूल्य 0.04% बढ़कर 77,020 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा था। वहीं चांदी 0.2% नुकसान के साथ 90,560 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी। मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज पर ध्यान दें तो वहां अंतिम समाचार मिलने तक फरवरी में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का वायदा मूल्य 0.04% घटकर 76,837 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं मार्च 2025 आपूर्ति वाली चांदी 0.37% घटकर 90,535 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी। और बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से उदयन आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद मनोज।
राइट, थैंक यू उदयन फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर ऑल दीज व्यूज एंड रिव्यूज। फ्रेंड्स, बिफोर वी क्लोज, हियर इज अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस अगेन। बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडेक्सेस कंटिन्यू डाउनवर्ड ट्रेंड। सेंसेक्स शेड्स 502 पॉइंट्स। निफ्टी सेटल्स बिलो 24,200। ओवर 17 lakh new employees enroll under Employees State Insurance Corporation scheme during October this year, and crude oil prices rise. Brent crude trades at $73.62 per barrel. On that note, it's time for us to wind up. That's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor Manoj Pathak signing off. Namaskar. Market Mantra.